श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ चतुर्थ स्कंद सप्तदश अध्याय श्लोक संख्या 14। ठीक है, प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदायुधं चतम् गो सत्यपात्रवद्भिता मृगीव मृगयुद्धृता प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदायुधं चतम् गोः सत्यपात्रवद्भिता मृगीव मृगयुद्धृता प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदायुधं चतम् गोः सत्यपात्रवद्भिता मृगीव मृगयुद्धृता। प्रवेपमाना कांपते हुए धरणी पृथ्वी निशाम्या देखकर उदायुधम धनुष बाण लेकर के च भी तम राजा को गो का सती बनकर उपात्रवत भागने लगी भीता अत्यधिक डरी हुई मृगी बा हिरणी के समान मृगयु शिकारी द्वारा ग्रीता पीछा की गई। अनुवाद उनका प्रेस प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे हैं तो वह भय के मारे कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार एक शिकारी द्वारा पीछे किए जाने पर हिरणी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। तात्पर्य, जिस प्रकार माता की कोख से बालक तथा बालिकाएं उत्पन्न होती है उसी प्रकार धरती की कुखी से विभिन्न रूपों में सभी प्रकार की जीवात्माएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार माता पृथ्वी अनंत रूप धारण कर सकती है। इस बार पृथ्वी के क्रोध से बचने के लिए पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। क्योंकि गाय अवध्य है अतः पृथ्वी ने ठीक ही समझा कि पृथ्वी के तीरों से बचने के लिए गाय का रूप धारण किया जाए, किंतु पृथ्वी इस रहस्य को समझ गए अतः उन्होंने गोरूप पृथ्वी का पीछा करना नहीं छोड़ा। ओम अज्ञानं निरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाहम् ददाति स्वपदान्तिकं वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्री रूपं सकृदातं सहगणं रघुनाथं तं तं सजीवं सात्वैकं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानुतं स नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग ने जो चतुर्थ स्कंद भागवत में पृथ्वी महाराज के राजत्व के शुरुआत जिसमें उन्होंने पृथ्वी को दमन कर रहे हैं ये प्रसंग सुन रहे हैं, तो आज के श्लोक में ये बताया गया कि धरती माता डर गई, केवल डर नहीं गई, डर करके भागी। ऐसे भागी उसको तुलना किया गया एक हिरणी के साथ। हिरणी के साथ, हिरणी जब कोई शिकारी के द्वारा पीछे किया जाता है तो जिस प्रकार डर के मारे वो भागती है, माता पृथ्वी ने गाय बन करके इस प्रकार भागी। इस श्लोक में ही बताया प्रवेपमाना हिरणी। वेपमाना, वेपमान शब्द हम भगवत गीता में देखते हैं एकादश अध्याय में। एत श्रुत्वा वचनम केशवस्य क्या है, एक सुक्ता वचनम केशवस्य वेपमानं किरीटी कृतांजलि वेपमानं किरीटी कृत अंजलि हरि सब हित हित प्रणम्य, बारंबार प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ कर कृतांजलि होकर के थर 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 कांपने लगा अर्जुन। जब भगवान ने बोल दिया कालो हम लोक खेतुत प्रवृत्त हो, मैं काल बनकर का आया हूं, सारे को सफाया करूंगा, प्रत्यनिकेश योद्धा कोई नहीं बचेंगे, सबको मारूंगा मैं, इतने बड़े बड़े भीष्म द्रोण अनेक जितने सुखे कर्ण आदि सबको। तो भगवान के इस काल रूप को देख करके अर्जुन जैसे दुर्दश योद्धा भी, इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े क्षत्रिय और उनका भक्त, उनके मित्र, उनके सामने जो रथी के रूप में बैठा है, वो ड्राइवर के रूप में खड़े, लेकिन भगवान के काल रूप देख करके उनका ये हाल हो गया, थर 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 कांपमान केवल सुन करके। सुत्वा वचनम केशवस्य, भगवान केशव के वचन को सुन करके थर 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 कांपने लगे रथ के ऊपर ही, पतंजलि वेपमान क्रीटी हाथ जोड़कर ऐसे कांपने लगी, और सब हित हित प्रणम्य बारंबार डर डर के मारे प्रणाम करने लगे। तो ये तो वेपमान किरीट में जो डर रहते, यहां धरणी का और ज्यादा कांपना, प्रवेपमान प्रकृष्ट रूपेण वेपमान, और ज्यादा कांपती हुई धरती माता इतनी क्यों डर गई। इसमें प्रसंग इस प्रकार चल रहा है कि महाराज पृथु अपने राज्य शुरू करना जा रहे हैं, शुरुआत उनके राजा के रूप में जो दायित्व है उसको निभाने के लिए भी राजगद्दी में बैठे, सब सुतम आगत बंदी आकर उनको प्रशंसा किए और उनका करोनेशन हो गया, उनका इंस्टॉलेशन जो शपथ पाठ वगैरह कर लिए। करने के बाद अभी सारे प्रजा भूखे में पीड़ित होकर के आकर उनके सामने बोले हम तो मर जाएंगे, कई दिन से खाए नहीं, अन्न नहीं। उनका इसी प्रकार स्थिति देख करके पृथ्वी महाराज ने बोले सबसे पहले मैं राजगद्दी में बैठा ये दृश्य मुझे देखना पड़ रहा है, मेरे प्रजा सब अन्नहीन में इतने रो रहे हैं, सब दुखी एक होके हैं, क्या कारण है, ये लोग तो काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, फिर अन्न क्यों नहीं मिल रहा उनको। तो पृथ्वी महाराज ने सोचने लगे, भागवत तो बता गया, उन्होंने बहुत उनके ये बात को सुने, सुन करके बहुत गहराई से सोचे इस बात को, सोचे कि क्या कारण हो सकता है, बिना विचारे बिना सोचे अगर काम किया जाए तो उसमें गलती हो सकती है। पृथ्वी महाराज ने बिल्कुल समय देकर के सोचे कि मेरे प्रजाओं की तरफ से कुछ गलती है, कि और किसी प्रकार से गलती है, कि किसी कारण से अन्न पैदा नहीं हो रहा है, जब उन्होंने चाहते हैं क्यों नहीं होता, तो उनको कारण पता चल गया। बड़े तीक्ष्ण बुद्धि थे महाराज पृथु, तो पता लगा लिए कि उनका तो गलती नहीं, पहले कभी कोई गलती हुआ होगा, उसी को पकड़ करके लत्ती ने जो उनका अन्न आदि जो है उनको देता ही नहीं, अपने अंदर रखा छिपा देता ही, कब क्या देखें, कब कोई ऐसे गाय होते हैं तो दूध को अपने अंदर रख लेते हैं, दूध निकले गए ऐसे कर देते हैं उनका होता है। तो इस प्रकार गाय का ही होता है, इस प्रकार कर सकती है। तो इस प्रकार माता धरती ने अन्न को पकड़ नहीं होने देती। तो जब ये कारण महाराज पृथु को पता चला तो महाराज पृथु ने सोचे कि अरे उनका तो उसे तो क्यों नहीं, तो पृथ्वी के ऊपर एक्शन लेने चाहिए, सारे प्रजा इतने पीड़ित हो रहे हैं, मरने जा रहे हैं, वह नहीं दे रहे हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लेने लगे। देखिए कोई अगर माँ का दायित्व तो होता है पुत्र का पालन करना, पुत्र कभी कुछ गड़बड़ कर सकता है कुछ, लेकिन अगर फिर सही होता है तो माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व पालन करना, अगर नहीं करे तो उनके ऊपर भी एक्शन लेना पड़ता है। तो महाराज पृथु का राज्य आराम से सबसे पहले ही एक्शन हुआ, इसलिए इतने बड़े प्रख्यात राजा बने, क्योंकि समग्र पृथ्वी के ऊपर एक्शन लिया उन्होंने। सोचने के लायक बात है, कोई शत्रु हो, कोई गड़बड़ी करे उस ऊपर एक्शन ले, ये कोई शत्रु है, ये पूरी धरती है, धरती के ऊपर कैसे कोई सोच सकता है आसन के लिए, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने समुद्र, इतने क्या क्या, कितने विशाल है धरती, उसके ऊपर क्या आसन लिया जा सकता है। हम कुछ 100 गज से 200 गज जमीन लेते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए हम हर कुछ नहीं कर पाते, क्या करेंगे। तो महाराज पृथ्वी के ऐसे व्यक्तित्व थे जो समग्र पृथ्वी की चैलेंज किए, और किए नहीं इस प्रकार चैलेंज किए, उनको एक्शन लेने के लिए चले, धनुष बाण उठाए, पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी डर के मारे इतने डर गई कि ये शब्द लगाया गया उनके लिए कि प्रदीप मान, बाप रे बाप, इतने भयभीत हो गए। तो इसमें एक बात समझ में आता है, अगर आप शासन करना चाहेंगे, किसी को मेंटेन करना चाहेंगे, तो बिना शक्ति से असंभव। शक्ति बहुत ही आवश्यकता है, और शक्ति के प्रभाव भय होना चाहिए। भय एक प्रिंसिपल है, बिना भय से कभी कोई संतुलन, कोई शासन संभव नहीं हो सकता। भागवत में कहा गया है, भगवान स्वयं कहते हैं, वायु बहता है मेरा भय से, ये सूर्य तपति मद भय, ऐसे ही है ना, मद भयात वाति वायु, मद भयात तपति सूर्य बरसति वर्ष, ये जो सारे काम सब प्रकृति कर रही है वो आपना नहीं कर रही है, ये सब आपने सना के भगवान के भय के मारे सब कर रहे हैं। भगवान कहते हैं केवल भय दिखाया मुझे एक बार, ऐसे नहीं बोले मैं नजर रखा हूं, इसीलिए प्रकृति काम कर रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं, मया धक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये चराचर प्रकृति जो कार्य कर रही है किसलिए, अध्यक्षता, कई इस प्रकार भी अर्थ करते हैं, अख्य मन आख, अध्यक्ष मन अधिकार पूर्वक, अधिकार पूर्वक आंख रखना नजर, कि कोई कोई काम करते ना लेबर, आप उनको देखो मैं छोड़ दो, शुक्र नजर नहीं रहे वो तो सो जाएंगे, लेबर का तो वो ही स्वभाव ही होगा, देसी तैसा कोई है नहीं, बस ये करे मिड़खा में बैठ जाएंगे, तो ढीला देना काम सहज स्वभाव, सब एक हम सब यही इतने आलसी है, कल मौका देखेंगे कोई देख नहीं रहे तो ठग दे काम ना करे। तो इसलिए हमेशा कोई नजर रखने वाला, कोई अगर मालिक नजर रख रहा है तो देख रहा है तो क्या करना, जब तक बैठा तब तक करना ही पड़ेगा, अब कोई उपाय नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण, मैं अधिकार अधिकारी हूं, भगवान बोलते मैं अधिकारी हूं, अधिकारी के रूप में मैं नजर रखा हूं, इसी बोलते अध्यक्ष अधिकार पूर्वक आंख रखा हूं उसके ऊपर। तो जब देखते हैं कि अधिकारी व्यक्ति नजर रखा है तो बिचरे कहां जाए, तो करना पड़ेगा। तो सारे प्रकृति पूरी एक्टिव है, क्योंकि उनके सुपरवाइजर उनके अधिकारी उनके ऊपर नजर रखा है। मैं अध्यक्ष न प्रकृति, अधिकार पूर्वक भगवान बोलते हैं कि मैं अधिकारी हूं, तो सारे के ऊपर नजर रखा हूं, तो इसलिए सब काम ठीक ठाक चल रहा है, दिन रात जो जो होता है सब हो रहा है। वो नजर हटा दे तो हमारा जैसे स्वभाव है, सभी का ऐसे ही स्वभाव, सब अपना अपना लकवा मार जाएंगे, सबके कोई काम दम नहीं है। तो इसलिए पृथ्वी माता का दायित्व है अन्न आदि देना, वो नहीं दे रही। जब पृथ्वी महाराज को पता चला तो आपने अधिकार दिखाने लगे, ये अधिकार के कारण ही शासन होता है, ये शक्ति और भय, एक बार भय भी भय दिखाए तो फिर चलते रहेगा उसके डर के मारे से। तो पृथ्वी माता डर गई, कैसे डरी, या उदाहरण देते हैं कि मृग ही बन, मृग के उदाहरण क्यों दिए, क्योंकि हिरण जितने सारे प्राणी होते हैं वो बहुत चंचल है, बहुत भागती है, डर के मारे भागती है, क्यों कोई ज्यादा डर क्यों हिरण को है, दूसरे किसी क्यों नहीं है, क्योंकि जितने प्राणी हैं जंगल में उनमें से देखने के लिए सबसे प्यारे हैं हिरण, है ना, केवल देखने के लिए प्यारे नहीं, उनके रूप जैसे सुंदर है, उनके जो मांसाहारी प्राणी है वो हिरण के मांसों को बड़े पसंद करेंगे, तो उनके मांस खाने के लिए पसंद करेंगे, उनके चमड़ा भी तो काम में आता है साधु संत का भी, उसके सिंह भी काम में आता है, तो जो बड़े कीमती वस्तु है तो उसको बहुत होशियार से रखना पड़ेगा, कई अरे उसके ऊपर किसी नजर तो नहीं पड़ेगा, उठा तो न ले। तो हिरण जैसे कीमती सबसे प्यारे सबके जो आवश्यकता है, इस प्रकार का प्राणी है तो इसलिए उसका ऊपर सब नजर है। कोई शिकारी जो वन में रहने वाले जंगली लोग हैं, वो जो जंगल से द्रव्य से लेकर चलते हैं, उनका नजर हमेशा रहता है हिरण के ऊपर। हिरण एक शिकार हो जाए तो मांस भी मिलेगा, सिंह भी मिलेगा, चाम भी मिलेगा, सब काम में आएगा। तो बाकी जंतु को शिकार करने के अलावा वो हिरण का पीछा करते हैं, तो इसलिए हिरण ही बात को जानती है, तो इसलिए ज्यादा भयभीत रहती है। कोई शिकारी आया मतलब मुझे छोड़ेगा नहीं, मारेगा। तो जब उन्होंने हिरण जब देखती है कि कोई शिकारी उनके पीछे धनुष मार देता, तो प्राण विकल्प को जानता कि प्राण लेगा, क्योंकि मेरा प्राण लेने से उनका काम बनेगा। इसलिए अपने प्राण भय से प्राण बचाने के लिए इतने डर जाती है, थर थर कांपती, बड़े द्रुत गति में भागती है। बाकी कोई जानवर इतने उनको पड़ी नहीं, वो शिकारी जाएगा बोले हम मारते क्या है, दूसरे आदमी को शिकार भी इतना इंटरेस्टेड नहीं मारने के लिए जितने हिरण को मारने के लिए इंटरेस्टेड। तो हिरण इसलिए शिकारी को देखते ही प्राण भय में भागती है और बहुत डर जाती है। तो ये जो हिरण का जिस प्रकार भय, जिस प्रकार डर, इसी प्रकार डर पृथ्वी की हो गई। पृथ्वी महाराज का ये पराक्रम को देख करके पृथ्वी माता इतने भयभीत हो गई, तो उनको तुलना दिया गया मरु गई। मृत्यु से कोई याद उसके पीछा करे तो बिल्कुल प्राण भय से भागे, डर के मारे कांपती हुई, ठीक इसी प्रकार पृथ्वी माता भाग रही। तो यहां इस अध्याय के शुरुआत में जो पूछा गया था कि ये बताइए कि ये पृथ्वी गाय के रूप, जो पृथ्वी बहुरूपिणी, ये तो कोई भी रूप धारण कर सकती है, तो गाय के रूप क्यों धारण की? पहला श्लोक में ही पूछा गया था तस्मा, क्यों पृथ्वी गाय के रूप धारण की, यद्यपि बहुत किसी भी रूप धारण कर सकती है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की शुरुआत में लिखते हैं, जैसे कोई मनुष्य है उनके माँ के कोख से बालक और बालिका उत्पन्न होते हैं, तो लेकिन धरती के उधर से तो जावतीय प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, तो किसी भी रूप धारण कर सकती है उनके क्षमता। तो ये केवल गाय के रूप क्यों धारण की, यही प्रश्न सबसे पहले पूछा गया था। तो इसी प्रश्न को उत्तर देने के लिए सबसे पहले ये बताना शुरू करते हैं इस श्लोक से कि पृथ्वी एक गोरूप क्यों धारण की, जो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था। तीन प्रश्न पूछे थे पहले श्लोक में, पृथ्वी काहे के लिए गाय के रूप धारण की, पृथ्वी महाराज ने इसको दोहन किए कैसे, कौन सा पात्र में दोहन किए, बछड़ा कौन बना, ये प्रश्न पहले पूछा गया था अध्याय की शुरुआत में। तो उसका उत्तर अभी यहीं से शुरू करते हैं, पृथ्वी गाय के रूप क्यों धारण की, क्यों धारण की, क्योंकि इतने डर गए प्रवेक माना धरणी, पृथ्वी महाराज का इस उग्र मूर्ति को देख करके वो धनुष बाण उठा लिए मुझे मारने के लिए। उनको पता चल गया कि मेरे गलती है, मेरे गड़बड़ के कारण प्रजा पीड़ित है। ये जब उनको कारण पता चला तो महाराज पृथ्वी इमीडिएट एक्शन के लिए तैयार हो, तुरंत अपने धनुष बाण उठा, और बाकी किसी को पता हो ना हो पृथ्वी माता को तो पता है पृथ्वी कौन है, पृथ्वी का शक्ति का सीमा कितना है ना। बाकी किसी को पता हो ना हो, कोई पृथ्वी महाराज जानते नहीं होंगे, लेकिन धरती माता को तो पता है, क्योंकि पृथ्वी का जन्म भी बड़े रहस्यपूर्ण है, क्योंकि वो तो साक्षात भगवत अवतार है, भगवान है। एक बार भगवान ने धरती माता को उद्धार की थी, जब धरती को हिरण्याक्ष लेकर के गर्भसागर में फेंक दी, उस कीचड़ से उठा करके भगवान ने लाए थे। तो भगवान के शक्ति का परिचय है माता धरती को, कितने असाधारण शक्तिशाली भगवान है। अपने प्रहार रूप में अपने दांत के ऊपर संपूर्ण धरती को ऐसे उठा करके लाए, जैसे आप कोई एक छोटा सा दाना सरसों को लेकर जाते हैं और कोई बहुत भारी होता है, बहुत थक जाते हैं, एक दाना सरसों को उठा कर यहां से 100 मीटर ले जाओ, पसीना उतर जाएगा, बड़े तंग हो जाएंगे। तो इसे उनको इतने तक भी नहीं हुआ, धरती पूरा समग्र धरती को उठाकर भगवान ला रहे। तो भगवान के शक्ति को धरती जानती है, तो कुछ भी नहीं, मुझे इसे उठा के ला रहे। तो जब उनको पता चला कि उन्होंने अभी राज रूप में वही भगवान स्वयं राजा बन करके आए हैं, और उनको पता चल गया कि गड़बड़ी मेरा है, मेरी दोष है, तो और मेरे दोष का उन्होंने विरोध करने के लिए, मुझे सजा देने के लिए उन्होंने अपने अस्त्र धारण किए। पृथ्वी महाराज को अस्त्र धारण करते देख करके धरती माता इतने भयभीत हो गई और डर के मारे भागी गई। वो जब भागी केवल भागकर कहां जाएगी, ये भी तो पता है कि एक महान शक्तिधर है, उनके सामने भागकर कहां जाऊं, ये तो कहीं भी पहुंच सकते हैं, उनके लिए कोई अगम्य स्थान नहीं है, क्योंकि भगवत अवतार है, कहां भागू। तो इसलिए धरती देवी ये सोचने लगी भाग कर तो कोई जाना नहीं, भागू भागू का तो सही, नहीं तो सामना सामने की मदद प्रयास तो करूं, लेकिन बचने का और भी कुछ उपाय किया जाए। क्या? तो कई रूप लेकर भाग सकती थी, तो गाय के रूप इसलिए चुनी कि गो अवध्य है। देखिए सृष्टि के शुरुआत में भी ये पता चलता है, ज्ञान प्राप्त होता है कि गो अवध्य है। बाकी प्राणी बद्ध कर सकते हैं, गाय को साधारणतः बद्ध नहीं किया जाता। ये गोमांस खाना पता नहीं कब से शुरू हो गया, ये पता चलता है कि तभी से गाय को धरती माता गाय के रूप इसलिए धारण किए कि उन्होंने, क्योंकि गाय को कोई नहीं मारते थे, गोबद्ध नहीं करते थे, तो बोले मैं इसे प्राणी के रूप धारण करूंगी। तो महाराज ने सोचे कि नहीं गाय है, इसको कैसे मार सकते, बाकी किसी को मारा जा सकता है लेकिन गाय को कुछ भी तरह से मारना नहीं चाहिए। इसलिए विचार करके गाय के रूप धारण की, और क्योंकि गाय को ऊपर कोई कष्ट आए, उनको बद्ध करने के प्रयास किए, तो समझो धर्म के नाश हो रहा है। तो इसलिए जब इस धरती में सबसे पहले कलिजुग का प्रकट हुआ, कलिजुग प्रवेश किया, तो वो भी यही लक्षण दिखाई पड़ा था कि कलि ने एक राजा बन करके, था तो शूद्र, राजा का वेश पहन करके सबसे पहले अटैक किया किसके ऊपर, गाय के ऊपर। तो गाय के ऊपर जहां कष्ट होता है, जब गाय को बद्ध किया जाता है, समझो कलिजुग वही है प्रकट। जहां गो अत्याचार ज्यादा होता है, गो हिंसा होता है, तो वही प्रकट कलिजुग विद्यमान। तो ये तो भागवत से सबसे पहले बता गया, कलि का प्रवेश गाय के ऊपर अटैक करके होता है, बाकी किससे नहीं, एंट्री इसमें हुआ, गाय को कष्ट देकर, गाय और बैल को कष्ट दिया, उनको रुला देकर। तो आजकल तो समाज में जहां देखो तहां गाय और बैल का दुर्दशा अवर्णनीय है, तो कलिजुग का पूरा बोलबाल चल रहा है, यही प्रमाण। परीक्षित महाराज जब देखे कि ये गाय को मार रहा है वो शूद्र ने, तो तुरंत उन्होंने भी अस्त्र धारण करके दौड़ पड़े। तो महाराज परीक्षित का सूर्य को देख करके कलि भी सरेंडर कर लिया, सरेंडर कर लिया उन्होंने, लेकिन उन्हीं का ही स्वभाव था, सबसे पहले आया धरती पर, लैंडिंग किया तो फास्ट एक्शन गाय मारने लगा। अरे क्यों कलि है, जितने गोबद्ध करने वाले, गो को कष्ट देने वाले सारे कलि के चले, तो यही तो भागवत सिखाता है। और इसलिए जो पूछा गया था गाय के रूप धरने क्यों ग्रहण की, क्योंकि गाय के रूप लेने से जो बड़े बड़े क्षत्रिय जो सामर्थ्यवान पुरुष हैं, राजा हैं, जो नीतिज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, वो फिर गाय को कष्ट नहीं देंगे, गाय को नहीं मारेंगे, इसलिए धरती देवी गाय के रूप ले ली। गाय के रूप डर के मारे ले ली ये नहीं, वास्तविक धरती का जैसे प्रत्येक का तीन प्रकार के रूप होता है, एक आधि भौतिक रूप, एक आधि दैविक रूप, एक आधि आत्मिक रूप। तो धरती माता का जो आदि भौतिक रूप है, जो हम देखते हैं धरती है, ये प्लैनेट है, और देवता के रूप में जो अधिष्ठात्री देवता है धरती के, वो है देवी गाय, गाय के रूप में। और आदि आत्मिक के रूप में तो भगवत पत्नी है, भगवान की पटरानी, इस प्रकार से तीन रूप है। लेकिन गायत्री पंचमा देखते हैं भागवत में भी, जब बड़े बड़े असुर आकर के बड़े अत्याचार किए धरती पर, तब धरती भी गाय के रूप लेकर के ब्रह्मा के पास गई अपने एप्लीकेशन देने के लिए, और उनको इस गो रूप में भी उनको लेकर के सारे देवताओं ने भगवान के पास प्रार्थना किए थे। तो भगवान, तो जब भी संकट आता है धरती के ऊपर, तो धरती इस गो रूप को धारण करती है, क्योंकि यही उनके आदिदैविक रूप है। तो इसी रूप को धारण करके उन्हें भागने लगे। तो इससे यह शिक्षा प्राप्त होता है सबसे पहले इसी ये श्लोक में कि प्रवेपमाना धरणी, कि धरणी की जो भय है, आप जो इतने भयभीत हो गई, तो इसमें से कोई भी समझ सकता है कि अभी तो जो बोलेगा सो करेगा, अब तो राजी हो जाएगा तुम्हें। इतने डर गए कि भागने लगे, भाग करके गाय के रूप ली, क्योंकि भाग कर कहीं नहीं जा सकती। एक बात और मन में आता है, जब पृथ्वी भागी तो कहां पर भागी? स्वयं पृथ्वी भागने लगी तो किसके ऊपर भागेगी? सरफेस क्या होगा? पृथ्वी महाराज उसके पीछे दौड़ेंगे? पृथ्वी के ऊपर दौड़ेंगे और कहीं दौड़ेंगे? सुनने में दौड़ेंगे। तो पृथ्वी तो थी, लेकिन उनके अधिष्ठात्री देव के रूप में गाय बनकर के भागी। पूरे पृथ्वी का जो मालकिन के रूप में जो गाय है, इसलिए कोई पृथ्वी के ऊपर भागने लगी और महाराज उनके पीछा करने लगे, छोड़ने। तो इसमें पता चलता है कि कोई सामर्थ्यवान राजा को, जैसे पृथ्वी महाराज के राज्य का शुरुआत है, अगर ठीक ठीक से राज्य शासन करना हो तो उनको इस प्रकार के शक्ति सामर्थ्य होना चाहिए, शक्ति सामर्थ्यवान होना चाहिए। ऐसे कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो फिर शासन नहीं कर सकता। और इतने शक्ति होना चाहिए कि शत्रु को चैलेंज करे पर्सनली, ऐसे नहीं किसी को पृथ्वी महाराज ने किसी ऑर्डर दिए सैनिकों को घिराव करो वो करो, नो, पुलिस को बोले उसके नाम है केस किए, केस सरकार ने व्यक्ति रूप स्वयं उन्होंने अस्त्र धारण किए, स्वयं का शक्ति इतने हो ताकि सभी थर थर कांप जाए, तब जाकर उचित शासन हो। जब आप इस प्रकार अधिकार नहीं दिखा सकते, अपने पराक्रम नहीं दिखा सकते, भय नहीं दिखा सकते, शासन नहीं हो सकते। ये पृथ्वी महाराज जैसे आदर्श राजा, उनके राज्य के शुरुआत से ही उन्होंने देखा, राज्य से शुरुआत से जैसे गति नसीन हुए, सबसे पहले ये कष्ट प्रजाओं के कष्ट देखे तो इमीडिएट अपने पराक्रम दिखाए। वो ऐसे पराक्रम की समग्र धरती डर के मारे कांप करके भागे और सरेंडर करेगी, जिसकी धरती सरेंडर की, बाकी प्रजाओं के तो बाकी क्या। आजकल तो गवर्नमेंट को कोई मानता ही, छोटे बच्चे भी लाइन कट जाने से गाली देंगे सरकार ऐसा, रास्ता पत्थर गिरा सरकार ऐसा, वो इधर गया सरकार, तो यही से बाकी इतने इजी हो गया सरकार को डिसाइड करना, गाली देना सरकार, शक्ति तो है ही नहीं, जानते हैं 5 साल में ऐसे वोट नहीं देते गिर जाए, आप भेजे अपने क्या है शक्ति, कोई से उचित शासन इसने। तो इसलिए शासन होता है इस प्रकार से, अधिकार और भय ये दोनों के द्वारा, जब इसे यहां मेरे ख्याल से उचित शासन समुचित शासन होता है, तो राजा इतने पराक्रमी होते हैं तो उनके भय के मारे सब ठीक ठीक चल रहा, जहां कार्यकर्ताओं का इस प्रकार भय नहीं रहे तो फिर अपना मनमानी करेंगे, तब फिर छोकड़ बनेंगे। इसी पृथ्वी महाराज का आविर्भाव होने से पहले कहा गया, जो महाराज थे उनके पुत्र वेण जब राजा बना, और वेण राजा बनने से पहले उन्होंने सारे राज्य में चोर उच्च के आ गए थे, सब जैसे करा सकता हूं राजा नहीं है तो सब लुटपाट सको, जैसे राजा आया तो फिर डर गए, राजा अगर स्ट्रांग राजा आ जाए तो सब बच जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। ऐसे शासक और पुलिस ऐसे लल्लू पंजू आ जाए तो कोई डरेंगे, सब करना रहे आजकल कैसे भी आ जाए तो पैसा पैसा देकर पुलिस को जैसे तैसे कर सकते, तो इसलिए सब चलो, जो धनी व्यक्ति हैं तो आयुक्त नहीं मानते, लेकिन ऐसे अगर कोई व्यक्ति हो जिसका सचमुच सामर्थ्य हो, पराक्रम हो, तो वो उचित शासन कर सकता है, उनके भय से ही शासन होगा। लोगों के अंदर और जो मंत्री और बाकी जनता के ऊपर उनको अगर उनके मन में उनके प्रति भय नहीं रहेगा तो ठीक से काम नहीं। हम सभी अपने ऊपर से लागू करके देख सकते हैं, जिसके ऊपर जिसको हम डरते हैं तो फिर उनको बोलने से पहले हम काम कर देते हैं, पता नहीं क्या। जहां डर नहीं, अरे रहने दो, क्या चलता चले, हम सभी का स्वभाव है। लेकिन जहां डर है उनको तो भाई कैसे भी आराम देकर उठ जाएंगे, काम तो कर ही देंगे, बाद में देखा जाए। डर एक ऐसा चीज है, भय एक ऐसा चीज है, सभी को सही रास्ता में ले जाता है। जहां भय नहीं, डर नहीं है तो खत्म। जबकि भक्तों का एक लक्षण में कहा गया भगवत गीता में, जब भक्तों के लक्षण भगवान बताते तब कहते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धि। देवताओं के जो जो संत का एक सबसे पहला बड़ा गुण होता है अभय, और भय नहीं करते, निर्भय होते हैं। जो भगवान के भरोसे में रहे फिर उनको भय किसका, भगवान मेरे प्रोटेक्टर है, वो अभय हो जाते हैं, निर्भय होते हैं। लेकिन वो अभय तो होते हैं लेकिन फिर भी एक भय रहता है, ये भय रहना बहुत ही जरूरी है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि दो जन को डर होना चाहिए, भय होना चाहिए, बाकी किसी को नहीं डरना चाहिए। बोलते हैं कि हरि डरा और गुरु डरा, गुरु को और हरि को भय करना चाहिए, तभी आप उचित व्यक्ति बन सकते, आपका व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, बाकी किसी को भय करना आवश्यकता नहीं, निर्भय। लेकिन अगर गुरु के लिए भय नहीं करेंगे और भगवान हरि के लिए भय नहीं करेंगे तब तो कर गए। ये दोनों भय अवश्य होना चाहिए, दोनों भय से ही हम निर्भय बन सकते हैं। कोई निर्भय पुरुष है तो ये दोनों भय रहता है, ये दोनों भय होना ही चाहिए। तो इस प्रकार आजकल बाकी सब डरते हैं लेकिन ये दोनों नहीं डरते। मानते नहीं तो खुल्लम खुला बोलते हैं, बोलते हैं हम वेद के सत्य अर्थ को जानते हैं। क्या जानते हैं ना, भगवान के बारे में बता सकते हैं, हाँ बताऊंगा, आप भी भगवान हो, ये भी भगवान हो, बिल्ली कुत्ता पेड़ पौधे सब भगवान है, हाँ तुम सब भगवान है। अच्छा, केवल मंदिर में जिसको आरती करते ना उनको छोड़ करके, बाकी और केवल भगवान को छोड़कर बाकी सारे भगवान, भगवान भगवान नहीं, ये उनके सिद्धांत है, लो समझो। तो मतलब भगवान को डर नहीं है, भगवान है लेकिन क्या लकड़ी है, पत्थर है, बेटा नहीं हो भगवान। भगवान बोले वाह क्या करूं मेरे बेटा, ऐसा है। और कुछ तो ऐसे ही है, इतने बड़े बड़े आध्यात्मवादी हैं, अरे मानते हैं भगवान को, हमारे परम पिता है, हमारे बालक है, पोषक है, ये भी मानते हैं शास्त्र पढ़ करके। और फिर क्या करना चाहिए, आपके जो पिता है, भगवान बताते हैं माता पिता माता मह धाता सब कुछ मैं हूं, उसको ही पढ़ते हैं भाष्य लिखते हैं, और फिर बोलते हैं मैं उस मेरे पिता परम पिता से मैं प्रवेश कर जाऊंगा, उनको सेवा नहीं करूंगा, सेवा करना चाहिए, ये गंदा सेवा कौन करेगा, क्या करूंगा, दास के नाम तो नहीं लगूंगा ना, ये लगा उन्हें प्रवेश कर जाएंगे। आप थोड़ा सोचिए, आपके पिताजी होंगे, आपको कितने कष्ट करके खिलाए पिलाए बढ़ाए, बचपन से इतने बड़े किए, आप समर्थ हो गए, पिताजी वृद्ध हो गए, वृद्ध हो गए, बोले बेटा मैं उठ नहीं सकता हूँ, एक ग्लास पानी ला सकता हूँ, मुझे प्यास का पानी पीऊंगा, बोले पिताजी देखो मैं आपको बहुत मानता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन पानी तो मैं नहीं लाऊंगा, फिर क्या करोगे ना, मैं तो आपका अंदर घुसना चाहता हूँ, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, कैसे प्रसन्न करोगे मुझे, मैं आपके अंदर घुस जाऊंगा। पिता बोले अरे बेटा तू मेरे अंदर कैसे आए, तो मैं अंदर घुसूंगा, मैं लीन हो जाऊंगा आपसे, तू मेरे से कैसे लीन हो जाएगा, मैं तेरे पिता हूँ ना, नहीं नहीं मुझे लीन होगा, है ना। तो कैसे पिता सोचेंगे, कैसे पुत्र, अब ऐसे कहेंगे जब, तो कैसे करेंगे। तो इस प्रकार भगवान के प्रति भय तो किसी से खत्म हो, और गुरु जी तो समझते हैं, और कोई बाकी दोस्त भी साथ भी कोई भय रहता है उनको, तो वो इस प्रकार भी नहीं है, तो कैसे हमारा उद्धार होगा। तो बिना भय से कोई भी नहीं सुधर सकता, ना कोई सटीक काम कर सकता। तो आदिराज पृथु ने जब अपने शासन शुरू किए, सबसे पहले ये अपने पराक्रम से इतने भय दिखा कि समग्र धरती कांप गई, इतने डर गई कि थरथर थरथर कांप करके भागी, और भागी तो काय रूप लेकर भागी ताकि मुझे मारे ना, इतने डर गई उन्होंने। तब जाकर के उनके भय से पृथ्वी अब तक काम चल रही चुकी। तो जब इतने शक्ति हो कि पृथ्वी की भी भयभीत कर सके डरा सके, तब फिर सामान्य प्रजा और बाकी की तो बात ही क्या है। तो इस प्रकार शक्ति सामर्थ्य ना हो तो कैसे शासन चलेगा, कौन माने, कोई नहीं मान सकता। तो अगर उचित शासन सब ठीक ठीक से हो तो वास्तविक रूप से ऐसे कोई व्यक्ति होना चाहिए जिनका अंदर इतने पुरुषार्थ इतने सामर्थ्य हो तो बिल्कुल भय भयभीत कर सके उन अंगों को, तो उनके भय के कारण और बिल्कुल सही काम जो नियम पालन करें। आजकल जो सरकार के नियम है हम उसको आराम से तोड़ देते हैं, कोई बात नहीं आएगा तो उसको पकड़ा नहीं दे सकते, उसमें से बिल्डर ने पैसा से काम ले लेंगे, फिर डर क्यों रहेगा, डर नहीं रहे। चोर लोग चोरी करने जाते हैं सबसे पहले पुलिस से कंसल्ट कर लेते हैं। एक बार मुझे कोई बता रहा था तीन बड़े बड़े देश का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस के अधिकारी होते हैं उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ, घटना मिले बातचीत कर रहे थे, जैसे अमेरिका है, लंदन है और इंडिया है, तीन मिले मिलकर आपसे बातचीत कर रहे थे, जो प्रतिरक्षा विभाग के सबसे बड़े बड़े अधिकारी। अमेरिका वालों को देखो हम इतने डेवलप कर चुके हैं इसी मामले में, कोई अगर चोरी डकैत होता है तो एक हफ्ता के अंदर पकड़ लेंगे, मैक्सिमम मान लो पकड़ लेंगे मान लो। लंदन वालों को कौन सा, आप तो पीछे हैं, हम आपसे और एडवांस कर चुके हैं। क्या एडवांस किया ना, हम तो एक दिन से तीन दिन ज्यादा से ज्यादा एक दिन में पकड़ लेते हैं, एक दिन में पता लगा लेते, तीन दिन तो ला करके उनको दंडित करके ही डाले ना। अच्छा यस, हमारा सो फास्ट है। अच्छा आप इतना एडवांस, इंडिया वाला बोले आप दोनों से बहुत पीछे, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इतने सख्त है, इतने एडवांस है, हमसे ज्यादा एडवांस है, हम तो सुने की बेकार है। अरे आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं सुना, क्या करे आप कैसे ना, हमारा 15 दिन पहले पता चला, आपको तो बाद में होता है, ऐसे हो सकता है, हम सो एडवांस कर चुके हैं, इतने एडवांस कर चुके हैं, 15 दिन पहले आप पहले किसी चोरी हुआ नहीं, बोले हाँ पहले चोर आपका साथ था, बाद में लड़के ने जाता तो हम पहले कहाँ इतने डाकू, हम पता था ये आ गए क्या, हम इस तरह किया, हमको कोई बात नहीं, देखें आपका पास लाभ बोल रहे हैं, देखेंगे आपसे पैसा लेंगे। तो वो समझ भी नहीं आया, इतने बड़े बड़े अधिकारी बोले हाउ इज पॉसिबल, नहीं तो आप बाद में चोरी होता है तो हम तो 15 दिन पहले से पता है उनका घर में चोरी होगा, ये करेगा ऐसे समझ नहीं आएगा, शहर हमारे भी इतने आए सो एडवांस है तो कैसे शासन चलेगा। इस प्रकार जो अधिकारी हैं अगर इस प्रकार रहेंगे तो कैसे शासन होगा। अच्छा तो इसलिए भागवत से ये पता चलता है कि सरकार जो राज्य के जो प्रधान होंगे तो इतने शक्तिशाली होना चाहिए, इतने उनके पराक्रम होना चाहिए कि अपने व्यक्तिगत रूप से बिना किसी की सहायता से पृथ्वी महाराज इतने शक्ति था कि पृथ्वी को चैलेंज किए तो पृथ्वी डर के मारे कंप गई और भागी, तो कैसे सरेंडर ना करे, कैसे काम नहीं होगी। और बाकी प्रजा तो एक बात बोलने एक बार सब ठीक ठीक काम चलेगा, तो हमको कितने बार बोले, अनाउंस करे, नोटिस देखा है, हाथ पकड़ के बोले काम नहीं बोले, डरे भय प्रिंसिपल है तो कैसे हो। तो जब तक कोई ऐसे व्यक्ति अधिकारी ना हो जो सभी के ऊपर ऐसे भय को जागृत ना कर सके तब तक तो उचित प्रकार के शासन सही न्याय के तो मिलना संभव, किसी प्रकार कोई न्याय हो नहीं सकता। ये पृथ्वी महाराज के राज्य की प्रारंभ से जो प्रकार आक्षण लिए थे आगे चल के उनके उनके विलाप बहुत पढ़ेंगे, लेकिन उनका सबसे बड़े खूबी सबसे बड़े उनके जो गुण था विशेष गुण कि इतने उनके सामर्थ्य था इतने पराक्रम था। जो शुरुआत में आपने राज सिंहासन में बैठने के इमीडिएट जो फास्ट एक्शन है आपने अधिकार को दिखाया, वो ऐसे अधिकार पराक्रम दिखाए कि पूरे समग्र धरती की हाल हो गई, ऐसे भागने लगी हिरण जैसे कोई उसके बाद पीछे कर रही बाप रे बाप डर के मरे भाग। तो ऐसे शासनकर्ता जो होंगे राजा तो फिर राज्य बिल्कुल परफेक्ट ठीक ठीक सब चलेगा, यही उसका आगे से ही पता चल जाता है। तो इस प्रकार महाराज पृथु का जो उनके पराक्रम है उनके गुण है जिसके द्वारा धरती की इस प्रकार की उन्होंने डराए और धरती ने उनके भय से गाय के रूप धारण की, तो इसलिए गाय भी पहले से पूज्य थी, नहीं तो धरती गाय के रूप क्यों धारण की। जब गाय का सम्मान और उनको पूज्य भाव और उनको बद्ध न करना ये सब बात पहले नहीं होता तो धरती नहीं करती थी गाय के रूप धारण, क्योंकि पहले से थी धरती गाय के रूप धारण करने से पहले धरती को पता थी कि गाय एक ऐसी रूप है जिसके ऊपर सभी का सहानुभूति होगा, कोई इसको अत्याचार नहीं करेंगे मारेंगे नहीं बद नहीं करेंगे। ये सृष्टि के शुरुआत से समय से था, इसीलिए धरती देवी उन्हीं के यही रूप को चुने। यद्यपि बहुरूपिणी कोई भी रूप ले सकती थी लेकिन गाय के रूप, लेकिन आजकल तो हम समाज देखते हैं कि सबसे अत्याचार बिचारे देवी गाय के ऊपर होते हैं। जब से हमारा वो ट्रैक्टर आ गया हमारा एडवांसमेंट, तो फिर बैल के किस काम के लिए है? भाई 100 बैल जो काम करेंगे एक ट्रैक्टर इतना काम कर लेंगे, उससे ज्यादा कर लेंगे, तो कोई कहे तो बैल को देखें ये हमारे एडवांसमेंट है जो हम शास्त्र आदि सीखते हैं कि जिनको हमेशा के लिए सृष्टि के आराम से सम्मान करना चाहिए, बध नहीं करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, इसी से हमारा शांति इसी से हमारा लाभ है, तो हम उनको केयरलेस अब क्या करेंगे पालेंगे नहीं छोड़ देंगे बस काट कर खाओ क्योंकि मैंने उनके ऊपर अत्याचार करो ऐसे करते हैं। तो ये कवि का विकट प्रभाव है। जब समाज में गो माता का स्थान उच्च में रहे उसके ऊपर कोई अत्याचार ना करे प्रसन्न रहे ऐसे भी शास्त्रों में देखा जाता है, जहां गाय और बैल खुशी में घूमते हैं रास्ता में इधर उधर तो समझो वही धर्म है कोई धर्म पालन करने वाला, जहां गाय के प्रति जरूरत होती है गाय और बैल समझो धर्म है, ये शास्त्र का वचन है। इसलिए क्योंकि धर्म जो है वो बैल है और धरती है गाय, एक दोनों खुशी नहीं है तो किसी और खुशी हो सकता। तो आजकल संसार में तो आपको पता है किस प्रकार की दशा है। तो इस प्रकार के इस भागवत की शिक्षा से किस प्रकार राज्य में शासन होना चाहिए, किस प्रकार नियम होना चाहिए और किस प्रकार गाय के प्रति पूज्य भाव सम्मान और उनके ऊपर अत्याचार न होना चाहिए, इस प्रकार के शिक्षा भागवत से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। इसी का कोई प्रश्न है?
ऐसा सुनने ऐसा बोला गया है कि भय बिन होत ना प्रीत, भय बिन होत ना प्रीत,
भय बिन ना हो प्रीत,
भय बिन ना हो,
भय के बिना प्रीत नहीं होता।
यस, तो अब ये भी है कि अलग अलग भक्त लोग भगवान की शरण में आते हैं, जैसा हम बताते हैं कि कुछ लोग भय के कारण आते हैं भगवान की शरण में, कुछ लोग अपना दायित्व कर्तव्य समझ करके ड्यूटी समझ करके आते हैं, कुछ लोग ज्ञान से और कुछ अल्टीमेटली प्रेम वश स्वतः ही। तो भक्ति का प्रारंभ क्या भय से प्रारंभ होता है क्या?
भय से ही होता है, भय से सब कुछ का शुरुआत है। यही तो विधि है, विधि पालन करते हैं भय के कारण, विधि करते करते फिर आप सहज हो जाते हैं, नेचुरल हो जाते हैं। ये जो सहज भाव आता है शुरुआत यहीं से होता है। हाँ जी, शास्त्र भय, शास्त्र को भय करके इसको कहते हैं। यही तो विधि है शब्द। जय श्री प्रभुपाद की। कोई पूछना है तो ओके बोले। जी ये जो दो डर के बारे में बताया ना, कि किसी की शास्त्र में कहा गया है कि जो भगवान के शरण में आया वो निर्भय हो जाता है ना, अभय शरणार विंद, भगवान के शरण में फिर भय क्या। लेकिन भय नहीं रहेगा, लेकिन इन दोनों को भय रखना चाहिए। इन दोनों को भय नहीं रखेंगे तो आप किसी दिन डर की भावना होनी चाहिए। आपको डर कभी किया ना, नहीं डरते ना नहीं। हाँ, जिसको दूसरे को ना डर करके उनको डरना चाहिए कि अगर मैं गुरु के चरण में कुछ अपराध करूं कि गुरु की सेवा ना करूं तो मेरा सर्वनाश हो जाए, ये भय होना चाहिए। आप बोलेंगे अरे छोड़ो यार, डर नहीं करेंगे तो आपका नाश हो गया, है ना। इस प्रकार हरि के उनके प्रति भय रहना चाहिए कि अगर हरि के प्रति मैं सेवा ना करूं, हरि के नियम को ना मानूं, स्वयं गुरु जी से साक्षात हरि जी से, ये होना चाहिए। वो होगा तो सारे नियम को ठीक ठाक आप करेंगे, नहीं तो क्या दोस्त है।